पूर्व पाठ में ये तिंगर्थ जो है वह किसका विशेषण बनता है, यह प्रसंग चल रहा था और ये प्रसंग आगे तक जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि तत्र कर्त कर्मणि फल व्यापारयोः विशेषणे, कि कर्ता जो है वह व्यापार का विशेषण होता है और कर्म जो है वह फल का विशेषण होता है। तो कर्ता कर्म किसका विशेषण है ये तो बता दिया। अच्छा, और ये फल और व्यापार किसके अर्थ होते हैं ये ध्यान में रखना, ये धातु के अर्थ है। तो धातु का जो ये दो अर्थ है फल और व्यापार, उसी में कर्ता और कर्म का अन्वय होता है। माने फल और व्यापार विशेष हो गया और कर्ता कर्म जो है वह विशेषण हो गया। किसका कौन हुआ, तो व्यापार का व्यापार हुआ विशेष और उसका विशेषण हो गया कर्ता, फल हुआ विशेष और उसका विशेषण हो गया कर्म। अब बात आती है संख्या के लिए और काल के लिए, कि संख्या किसका विशेषण बनता है और काल किसका विशेषण बनता है। तो उसके लिए बताते हैं कि संख्या कर्तृ प्रत्यय कर्तरी। मैंने आपको बताया था ना पिछले पाठ में कि तीन तरह का वाक्य बनता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य वाला जो वाक्य है ना, उसको यहाँ पर कहा गया कर्तृ प्रत्यय, माने कर्ता अर्थ में प्रत्यय होने पर, माने कर्तृवाच्य में। तो संख्या कर्तृवाच्य प्रत्यय कर्तरी, माने कर्तृवाच्य रहने पर संख्या जो है वह कर्तरी माने कर्ता में विशेषण बनता है। और कर्मवाच्य रहने पर कहाँ विशेषण बनेगा, तो वो लिखते हैं कर्म प्रत्यय कर्मणि, माने कर्मवाच्य में कर्म में विशेषण बनता है। तो संख्या जो है वह कर्तृवाच्य में कर्ता में विशेषण बनेगा और कर्मवाच्य में कर्म में विशेषण बनेगा। आपको ध्यान होगा कि जब कर्तृवाच्य में वाक्य बनाते हैं ना, तो कर्ता के अनुसार क्रिया करते हैं, और कर्मवाच्य जब बनाते हैं वाक्य तो कर्म के अनुसार क्रिया करते हैं। मतलब कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन, कर्म कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। ऐसे ही कर्मवाच्य में जो है कर्म में एक वचन है। अगर हम कहेंगे कि पुस्तकम पठ्यते, तो पुस्तकम कर्म है एक वचन, तो पठ्यते कहते हैं। अगर दो पुस्तक होगा कि द्वे पुस्तके, तो पठ्येते प्रयोग होगा। त्रीनी पुस्तकानी अगर कर्म है तो त्रीनी पुस्तकानी पठ्यन्ते, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कर्तृवाच्य में संख्या जो है कर्ता में विशेषण बनता है और कर्मवाच्य में संख्या जो है वह कर्म में विशेषण बनता है। अब यहाँ पर कोई अगर पूछे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कर्तृवाच्य में कर्ता का संख्या विशेषण है, क्यों कर्मवाच्य में कर्म का संख्या विशेषण है, इसके विपरीत क्यों नहीं है, तो इसका जवाब दिया समान प्रत्यय उपातत्वात्। उपात्त कहते हैं उक्त को, तो समान प्रत्यय के द्वारा उपात्त होने के कारण, ये जिसमें त्वात लगा हो ना जिस शब्द में, उस त्वात का अर्थ होता है होने के कारण। तो समान प्रत्यय उपातत्वात् माने एक समान प्रत्यय के द्वारा उक्त होने के कारण। ये क्या कहा इन्होंने, ये कहा कि ये जो संख्या है और कर्ता कर्म है ये समान प्रत्यय के द्वारा उक्त होता है। जैसे गच्छति है, तो गच्छति में ती के द्वारा ही कर्ता अर्थ आता है और ती के द्वारा ही संख्या अर्थ आता है। तो समान प्रत्यय जो ती प्रत्यय है उसी के द्वारा कर्ता अर्थ भी आया और संख्या अर्थ भी आया, इसीलिए संख्या जो है वहाँ कर्ता का विशेषण बनेगा। कर्मवाच्य में कौन सा प्रत्यय आता है, तो प्रत्यय आता है। पच्यते में जैसे तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय के द्वारा ही अर्थ निकलता है कर्म, और तो प्रत्यय के द्वारा ही अर्थ निकलता है संख्या। तो दोनों ही अर्थ जो है समान प्रत्यय के द्वारा उक्त होता है, इसीलिए कर्मवाच्य में संख्या जो है कर्म का विशेषण बनता है। तो समान प्रत्यय के द्वारा उक्त होने के कारण कर्तृवाच्य में संख्या कर्ता का विशेषण है, और समान प्रत्यय के द्वारा उक्त होने के कारण कर्मवाच्य में संख्या जो है वह कर्म का विशेषण है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब जो है ना एक कार्य कारण भाव बताते हैं। ये कार्य कारण भाव क्या होता है इसको समझ लीजिए। कार्यम च कारणम च इति कार्य कारणे तयोः भावः कार्य कारण भावः। कार्य और कारण में पहले द्वंद्व समास होता है, और उसके बाद भाव शब्द के साथ समास होता है। तो द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द रहता है उसका ना पीछे के हर एक शब्द के साथ संबंध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्यम च कारणम च इति कार्य कारणे द्वंद्व समास हुआ, और तयोह भाव कार्य कारण भाव, तो कार्य कारण यहाँ द्वंद्व समास है, उसके लास्ट में कौन सा शब्द है, भाव शब्द है। तो इस भाव शब्द का पीछे के प्रत्येक शब्द के साथ अन्वय होगा, तो कार्य में भी भाव लग जाएगा और कारण में भी भाव लग जाएगा। तो कार्य कारण भाव का मतलब होगा कार्य भाव और कारण भाव। आप जानते हैं कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत है कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। तो ये जो सिद्धांत है कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, ये शाब्द बोध के प्रसंग में भी ये फिट बैठता है। शाब्द बोध के प्रसंग में भी कार्य कारण भाव होता है। शाब्द बोध क्या है, मैंने कभी बताया होगा कि शब्द से, शब्द को सुन करके जो बोध होता है उसको कहते हैं शाब्द बोध। और शब्द जो है वह दो प्रकार का, तीन प्रकार का होता है, वर्णात्मक शब्द, पदात्मक शब्द और वाक्यात्मक शब्द। माने वर्ण के रूप में जो शब्द होगा वह भी शब्द है, पद के रूप में जो शब्द होगा वह भी शब्द है, और वाक्य के रूप में जो शब्द होगा वह भी शब्द है। तो इन तीनों प्रकार के शब्दों से होने वाला जो बोध है उसको हम कहते हैं शाब्द बोध। और शाब्द बोध जो है ये कार्य है, और इसका कारण जो है वह भी है। तो शाब्द बोध रूपी जो कार्य है, उस शाब्द बोध रूपी कार्य में कौन सा कारण होता है उसके लिए अलग से विचार किया जाता है, और ये जब अन्य प्रसंग में, अन्य प्रकरण में ये बातें आएंगी तो मैं बताऊंगा। यहाँ पर बात ये हो रही है, केवल यहाँ के प्रसंग में केवल हमें इतना समझना है कि इससे पहले आया है ना कि कर्तृवाच्य में संख्या जो है वह कर्ता का विशेषण होता है, और कर्मवाच्य में संख्या जो है वह कर्म का विशेषण होता है। इसमें शाब्द बोध कैसे होगा, जैसे पचति है, तो पचति में आप देखिए दो पद है, एक है पच पद, दूसरा है ती पद। तो पच पद, पच जो है वह धातु पद है ना, उसका अर्थ क्या होगा, फल और व्यापार। और ती जो है प्रत्यय है, उसका क्या अर्थ होगा, तो कर्तिकर्म संख्या काल। इसमें ना चूंकि ये पचति कर्तृवाच्य का रूप है इसलिए तीन ही अर्थ होंगे, कर्म अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ होगा कर्ता, संख्या और काल। और जब कर्मवाच्य में बोलेंगे ना पच्यते, तब भी तीन अर्थ होगा, उसमें कर्ता को छोड़ देंगे, बाकी रखेंगे कर्म, संख्या और काल। तो पचति कहने पर, पचति शब्द को सुनकर के जो बोध होता है उसको कहते हैं शाब्द बोध। पच्यते सुन करके, पच्यते शब्द को सुन करके जो बोध होगा उसको कहेंगे शाब्द बोध, ठीक है ना। और शाब्द बोध में क्या होता है ना कि कोई प्रकार होता है और कोई विशेष्य होता है। तो विशेष्य तो आप जानते हैं, जैसे नीलम कमलम है तो कमलम विशेष्य है और नीलम जो है वह विशेषण है। विशेषण शब्द के लिए एक और भी शब्द का प्रयोग होता है शास्त्र में, उसको कहते हैं प्रकार। तो प्रकार और विशेषण ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। तो शाब्द बोध जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर जो है ना कोई प्रकार होगा और कोई विशेष्य होगा। शाब्द बोध स्थल में, शाब्द बोध क्या है वो तो मैंने समझा दिया ना कि वर्णात्मक, पदात्मक और वाक्यात्मक शब्द को सुनकर के जो बोध होता है उसे हम शाब्द बोध कहते हैं। और वह जो शाब्द बोध है उसमें होता क्या है, उसमें विशेष विशेषण भाव होता है। माने कोई जो है विशेष होता है और कोई विशेषण होता है। ये बात पहले के पाठ में भी आई थी ना कि पदार्थम निरूप्य वाक्यार्थम निरूपयति, माने फल व्यापार यो धातु जो कारिका है इसमें पूर्वार्ध के द्वारा पदार्थ का निरूपण किया गया और उत्तरार्ध के द्वारा जो है वाक्यार्थ का निरूपण किया गया। तो उसमें हमने समझाया था कि वाक्यार्थ में क्या होता है कि विशेष विशेषण भाव का विचार होता है कि कौन विशेष होगा और कौन विशेषण होगा। तो शाब्द बोध जो है उसको हम वाक्यार्थ बोध शब्द से भी कहते हैं। शाब्द बोध और वाक्यार्थ बोध दोनों एक ही बात को बताता है। तो आप जो है ना दोनों वाक्यार्थ बोध अगर मैं बोलूं तो भी आप शाब्द बोध समझिएगा, और शाब्द बोध मैं बोलूं तो वाक्यार्थ बोध समझिएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अच्छा, तो शाब्द बोध में क्या होता है, विशेष विशेषण भाव होता है, माने कोई विशेष होता है और कोई विशेषण होता है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में देखिए, इन्होंने कहा था कि संख्या विशेषण है और कर्ता जो है विशेष है, तो इसको क्या कहेंगे कि आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध। यह जो बोध है, इस बोध में कौन प्रकार है, तो संख्या जो है प्रकार है माने विशेषण है, और वह संख्या किसका अर्थ है, तो आख्यात का अर्थ है। आख्यात मतलब ध्यान है ना, तिंग, तो आख्यातार्थ माने तिंगार्थ। तो यहाँ पर कार्य कारण भाव बताते हैं, वे कहते हैं कि आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति, बोधम प्रति माने शाब्द बोधम प्रति, माने आख्यात का अर्थ जो संख्या है, वह संख्या प्रकार होता है, विशेषण होता है जिस बोध में, जिस शाब्द बोध में। तो यह जो इस तरह का जो शाब्द बोध हो गया, यह हुआ कार्य। कार्य क्या होता है, उत्पन्न होता है, और कारण क्या होता है, उत्पादक होता है, वह उत्पन्न करता है। तो आख्यातार्थ संख्या प्रकारक शाब्द बोध के प्रति, माने आख्यातार्थ संख्या प्रकारक शाब्द बोध रूपी कार्य के प्रति क्या कारण होता है, कौन से कारण होने से इस तरह का बोध होगा, जिस बोध में आख्यातार्थ संख्या जो है वह प्रकार बन जाएगी, विशेषण बन जाएगा। तो उसमें कारण बताते हैं, आख्यात जन्य कर्त कर्म उपस्थिति हेतु। आख्यात माने तिंग, तिंग से जन्य, जन्य माने उत्पन्न, तो तिंग से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न से बढ़िया अर्थ यहाँ पर जन्य का ना बोध्य ले लीजिए, माने आख्यात से जो बोध्य है, कौन, कर्त और कर्म, बोध्य या वाच्य कह लीजिए तो वो और भी अच्छा होगा। तो आख्यात का जो जन्य है माने वाच्य है, वाच्य माने अर्थ, तो आख्यात का जो वाच्य है कौन, कर्ता और कर्म, इन दोनों की जो उपस्थिति होती है वही हेतु है, हेतु है मतलब कारण है। तो अब यहाँ पर कारण क्या बताया गया, आख्यात जन्य कर्त कर्म उपस्थिति, और कार्य किसको बताया गया, आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध। तो ये इन दोनों को मिलाकर के ये जो वाक्य बना, क्या, आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति, आख्यात जन्य कर्त कर्मोपस्थितिर हेतु, ये जो वाक्य है इसी वाक्य को कहते हैं कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव का मतलब मैंने बताया था ना कि कार्य भाव और कारण भाव। कार्य कारण भाव वाली जो पंक्ति होती है या कार्य कारण भाव वाला जो वाक्य होता है, उसमें पूर्वार्ध होता है कार्य और उत्तरार्ध होता है कारण। इसमें पूर्वार्ध कौन है, आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधम प्रति, ये कार्य भाव है, और आख्यात जन्य कर्त कर्मोपस्थिति हेतु, ये कारण भाव है। इतना समझा आपने। अब ये समझिए कि यहाँ पर एक नया शब्द आया है, आख्यात जन्य कर्त कर्म उपस्थिति ही हेतु। ये उपस्थिति क्या है, तो उपस्थिति मतलब अटेंडेंस नहीं, उपस्थिति का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान बोध। तो आख्यात जन्य कर्त कर्म उपस्थिति माने बोध, आख्यात से जन्य माने होने वाला जो कर्त कर्म का बोध है वही कारण है। तो आख्यात माने तिंग होता है ना, तो तिंग प्रत्यय से चूंकि कर्त और कर्म का बोध होता है, इसीलिए आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध होता है, यही कार्य कारण भाव का आशय है। फिर से सुन लीजिए कि आख्यात से कर्त कर्म का बोध होता है, इसीलिए आख्यातार्थ संख्या प्रकार वाला शाब्द बोध संभव होता है, ये कार्य कारण भाव का मतलब हुआ। ये जो बात यहाँ पर बताई गई है ये शास्त्रीय शैली में है, लेकिन इसको जो है ना पहले ही समझा दिया गया है। पहले समझाया था ना कि समान प्रत्यय से उपात्त होने के कारण संख्या कर्ता का विशेषण है कर्तृवाच्य में, और कर्म का विशेषण है कर्मवाच्य में। ये जो पहले बात बताई गई थी ना, उसी को कार्य कारण भाव वाली शैली में उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, जो वहाँ पर आपने पढ़ा वही बात यहाँ कही गई है, केवल शैली का भेद है। वहाँ पहले वाली जो शैली है वो सामान्य शैली है, और दूसरी वाली जो शैली है ये शास्त्रीय शैली है, इसको कार्य कारण भाव शैली कहते हैं। तो कार्य कारण भाव शैली में उसी बात को बताया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ कि आख्यातार्थ संख्या है प्रकार माने विशेषण, जिस शाब्द बोध में उस शाब्द बोध के प्रति क्या हेतु है, क्या कारण है, तो आख्यात जन्य कर्त कर्म उपस्थिति हेतु है, माने आख्यात से होने वाला कर्त कर्म का बोध जो है वह कारण है। इसको अगर आप इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं कि जहाँ पर आख्यात से कर्त कर्म का बोध होगा वहाँ पर आख्यातार्थ संख्या प्रकारक शाब्द बोध होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध के प्रति आख्यात से होने वाला जो है कर्त कर्म का बोध जो है वह कारण है। इति कार्य कारण भाव फलित, इस तरह का कार्य कारण भाव यहाँ पर फलित होता है। तो ये वैयाकरणों के सिद्धांत के अनुसार बताया गया। अब न्यायिकों के यहाँ न इस संबंध में अलग सिद्धांत है और उस बात को अगले पाठ में हम पढ़ेंगे, आज यहीं।